एकात्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकात्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान और आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में कह सकते हैं गोता लगाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। थोड़ी सी मुश्किल है शायद, पर बेहद जरूरी भी।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी दार्शनिक एलेन बादियो की काफी मशहूर और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब भी, बीइंग एन इवेंट के बारे में।
बिल्कुल, अब कोई भी सोच सकता है कि भाई दर्शन की किताब, वो भी इतनी जटिल, आज क्यों सुने। तो बात यह है कि ये किताब उन बड़े सवालों से जूझती है जो आज भी हमारे सामने हैं, जैसे दुनिया में अचानक बड़े बदलाव कैसे आ जाते हैं।
हाँ, जैसे कोई क्रांति हो गई या कोई बिल्कुल नया वैज्ञानिक सिद्धांत आ गया, या कभी कभी अपनी ही जिंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो सब कुछ बदल देती है।
सही, तो ये किताब स्थिरता और वो जो अचानक होने वाला परिवर्तन है ना, उसको समझने का एक बिल्कुल नया तरीका बताती है।
और सबसे अनोखी बात पता है क्या है? बादियो इन सवालों के जवाब देने के लिए कविता या धर्म का सहारा नहीं लेते, वो गणित का सहारा लेते हैं, खास तौर पे सेट थ्योरी का।
हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर शायद यही बात इस किताब को इतना मौलिक और उत्तेजक बनाती है ना? ये पूछती है, होने का मतलब क्या है और दुनिया में कुछ बिल्कुल नया, वो कैसे संभव होता है?
तो ये एक गहरा सवाल है जिसके तह तक जाने की कोशिश बादियों करते हैं।
तो चलिए इसी इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि बादी हमें क्या सिखा सकते हैं। पहले थोड़ी बात करते हैं इस अनोखे विचारक के बारे में, एलन बादियू।
एलन बादियू, इनका जन्म 1937 में मोरक्को में हुआ था और ये फ्रांस के उन गिने चुने दार्शनिकों में से हैं जिनकी धूम मतलब पूरी दुनिया में है। पेरिस के बहुत मशहूर इकोल नोमाल सुपीरियर से पढ़े भी और बाद में वहां पढ़ाया भी।
अच्छा,
और दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता गणितज्ञ थे और बादियों खुद भी गणित में काफी माहिर थे।
और लगता है यही गणित का ज्ञान उनके दर्शन का एक तरह से आधार बन गया। वो अपने समय के कई मशहूर विचारकों से, जैसे फूको या देरिदा का नाम आता है, उनसे इस मायने में अलग थे।
हाँ बिल्कुल, जहां बहुत से लोग उस समय सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के विचार पर ही सवाल उठा रहे थे कि ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, बादियों ने पूरी दृढ़ता से कहा, नहीं, सत्य मौजूद है और हमें उसे खोजना होगा और कभी कभी उसके लिए लड़ना भी होगा।
अच्छा, तो ये तो काफी मजबूत दावा है उस समय के हिसाब से।
बिल्कुल, उनकी सोच को देखें तो मोटे तौर पर चार स्तंभों पर टिकी है। पहला, दर्शन की गहरी समझ जाहिर है। दूसरा, गणित, जिसे वो मानते थे कि यही होने का असली विज्ञान है।
गणित, होने का विज्ञान, ये अपने आप में बड़ी बात है।
हाँ, और तीसरा, उनकी राजनीतिक सक्रियता, खासकर 1968 के जो छात्र आंदोलन हुए थे पेरिस में, उसके बाद उनका झुकाव माओवाद की तरफ भी रहा। और चौथा स्तंभ है कला, कविता, नाटक में उनकी गहरी रुचि।
वाह, तो ये चारों चीजें, दर्शन, गणित, राजनीति और कला,
हाँ, इन चारों को मिलाकर वो एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो जिंदगी के लगभग हर पहलू पर लागू करने की कोशिश करते हैं, प्यार, राजनीति, कला, विज्ञान, सब पर। ये वाकई में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा वाला प्रोजेक्ट है।
हाँ ये तो है। और ये भी बताना जरूरी है शायद कि ओलिवर फेल्थन का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसकी काफी तारीफ होती है।
हाँ,
क्योंकि बादियों की भाषा और विचार थोड़े जटिल हैं, तो उस अनुवाद ने से दुनिया भर के पाठकों तक पहुंचाने में मदद की।
सही कहा।
तो अब आते हैं किताब पर, बीइंग एन इवेंट। ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है, इसका सार क्या है, अगर हम समझने की कोशिश करें।
देखिए, बादियों को लगता था कि उनके समय का जो दर्शन है वो या तो बस भाषा के खेल में फंस गया है, हर चीज को सिर्फ शब्दों का जाल बता रहा है, या फिर उसने ये मान लिया है कि कोई बड़ा सच्चा बदलाव या कोई सार्वभौमिक सत्य जैसी चीज संभव ही नहीं है।
अच्छा, एक तरह का निराशावाद मतलब।
हाँ कह सकते हैं। तो बीइंग एन इवेंट इसी निराशावाद को चुनौती देती है। ये किताब वास्तविकता, बदलाव और इंसान की जो क्षमता है दुनिया को बदलने की, उसके बारे में सोचने का एक नया आधार देने की कोशिश करती है।
इसका सबसे बुनियादी और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार जो मुझे लगा वो ये है कि होना अपने मूल रूप में एक नहीं है बल्कि अनेक है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब दुनिया की तह में कोई एक चीज, कोई एक सिद्धांत या कोई एक सत्ता नहीं बैठी है, बल्कि क्या है, अनगिनत बिखरी हुई चीजों का एक समूह, एक शुद्ध बहुलता, जिसे वो प्योर मल्टीप्लिसिटी कहते हैं।
तो फिर ये जो हमें एक व्यवस्थित दुनिया दिखती है जिसे वो स्थिति, सिचुएशन कहते हैं, वो क्या है?
हाँ, वो कहते हैं कि ये जो स्थिति है, ये दरअसल इसी बिखराव पर, इसी अनेकता पर थोपी गई एक व्यवस्था है। एक तरह से हमने उसे गिन लिया है।
गिन लिया है,
हाँ। इसे बादियो एक खास शब्द देते हैं, एक के रूप में गणना, काउंट एज वन। सोचिए जैसे जंगल में अनगिनत पेड़ पौधे हैं, ये हुई शुद्ध बहुलता। लेकिन हम उसे जंगल कहते हैं, एक नाम देते हैं, एक संरचना, ये हुआ एक के रूप में गिनना।
अच्छा।
या जैसे समाज में करोड़ों लोग हैं, पर हम उन्हें अलग अलग श्रेणियों में गिनते हैं, जाति, धर्म, वर्ग।
बिल्कुल।
यही गिनती है जो उस बिखराव को एक स्थिति बनाती है, एक जानी पहचानी दुनिया बनाती है।
और यही पर शायद सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, घटना का।
हाँ, घटना। घटना वो अप्रत्याशित चीज है जो इस बनी बनाई स्थिति के नियमों को तोड़कर आती है, अचानक से। ये कुछ ऐसा नया लाती है जिसे मौजूदा व्यवस्था पहचानती नहीं है, जिसको पहले गिना नहीं गया था, जिसे शायद असंभव माना जाता था।
जैसे कोई उदाहरण।
यही तो मजेदार बात है। बादियो कहते हैं विषय कोई पहले से मौजूद मैं या हम नहीं है। विषय तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति या कोई समूह उस अप्रत्याशित घटना के सच होने का दावा करता है।
दावा करता है,
हाँ। और सिर्फ दावा नहीं, बल्कि उसके प्रति निष्ठा, फिडेलिटी दिखाता है, और फिर उस नए सच को दुनिया में स्थापित करने के मुश्किल काम में जुट जाता है। तो विषय घटना से पहले नहीं होता, वो घटना के बाद अस्तित्व में आता है।
ये तो पूरी सोच ही पलट देता है कि हम घटना के बाद बनते हैं। खैर, चलिए अब किताब के अंदर थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आपने बताया था कि बादियो ने इसे 37 मेडिटेशंस में बांटा है।
हाँ, 37 ध्यान कह लीजिए। हम हर एक पर तो नहीं जा पाएंगे जाहिर है, पर जो मुख्य विचार है उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल।
शुरुआत होती है उसी धमाकेदार दावे से जिसकी हमने बात की थी, गणित ही सत्व शास्त्र है, ऑन्टोलॉजी है। मतलब होना क्या है, इसका असली अध्ययन गणित के सिवा कुछ नहीं है, और खासकर सेट थ्योरी।
सेट थ्योरी जो हम स्कूल में पढ़ते थे।
हाँ,
वो वाले।
हाँ, पर ये उसका बहुत गहरा और दार्शनिक इस्तेमाल है। बाद्यू का एक और मशहूर कथन है, एक नहीं है दुनिया की बुनियाद में, एकता नहीं बिखराव है, बहुलता है। और इस सब का आधार क्या है?
क्या है?
शून्य, यानी खाली सेट, फाइ। ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, पर गणित में हर सेट, हर संख्या अंततः शून्य से ही बनती है। बाद्यों के लिए शून्य सिर्फ खाली पर नहीं है, वो हर चीज का स्रोत है, वो अनदेखी संभावना है जो हर स्थिति में छुपी होती है पर गिनी नहीं जाती।
बाप रे, शून्य ही सबका आधार है, ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, तो अगर बुनियाद में सिर्फ बिखराव और शून्य है, तो फिर हमें ये दुनिया इतनी व्यवस्थित क्यों लगती है? इसमें नियम, कायदे, चीजें अपनी जगह पर क्यों दिखती हैं?
हाँ, यहीं पर वो एक के रूप में गणना और स्थिति का विचार काम आता है। हमारी भाषा, हमारे नियम, हमारी संस्थाएं, सरकार, स्कूल, परिवार, ये सब मिलकर इस बिखराव को समेटते हैं, उसे एक ढांचा देते हैं, एक जानी पहचानी दुनिया बनाते हैं। लेकिन बाद्यो कहते हैं कि हर स्थिति में हमेशा कुछ ज्यादा होता है, कुछ ऐसा जो गिना नहीं गया, कुछ ऐसी संभावनाएं, ऐसे समूह जो व्यवस्था के बाहर हैं। वो गणित के पावर सेट एक्सियम का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि किसी भी स्थिति के जो हिस्से होते हैं वो हमेशा उसके तत्वों से संख्या में ज्यादा होते हैं। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अनगिनत रह जाता है।
अच्छा, ये तो गणितीय तर्क हुआ। और इस ज्यादा को, इस अनगिनत को काबू में रखने के लिए क्या होता है?
उसके लिए होती है स्थिति की दशा, स्टेट ऑफ द सिचुएशन। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे ये सरकार है, या पुलिस है, या समाज के नियम है। ये मेटा स्ट्रक्चर है।
मेटा स्ट्रक्चर,
हाँ, मतलब स्थिति के ऊपर एक और संरचना। ये न सिर्फ चीजों को गिनती है, बल्कि उनके समूहों को भी गिनती है, उनको लिस्ट करती है, वर्गीकृत करती है, ताकि कुछ भी बाहर न रह जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जो व्यवस्था को चुनौती दे सके। इसका काम है स्थिरता बनाए रखना, शून्य को बाहर रखना।
ठीक है, तो एक तरफ स्थिति और उसकी दशा है जो सब कुछ काबू में रखना चाहती है, लेकिन फिर भी बदलाव तो आता है, क्रांतियां होती हैं, नए विचार आते हैं, वो कैसे?
बिल्कुल। और यहीं पर घटना, इवेंट का रोल आता है। घटना कहाँ होती है? बादियों कहते हैं ये स्थिति के उन कोनों पर होती है जहां कुछ तत्व शून्य के कगार पर होते हैं।
एज ऑफ द वॉइड,
शून्य के कगार पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि स्थिति उन तत्वों को जानती तो है, शायद गिनती भी है, पर उनकी किसी खास क्षमता को नहीं पहचानती, उसे नहीं गिनती। जैसे फैक्ट्री मजदूरों को उनके नाम से गिनती होगी, उनकी हाजिरी लगती होगी, पर शायद उनकी एक साथ मिलकर क्रांति करने की जो क्षमता है वो स्थिति के लिए शून्य है, वो उसे नहीं गिनती। यही शून्य का कगार है और यहीं से घटना फूट सकती है।
अच्छा, ये दिलचस्प है। तो घटना खुद क्या है?
घटना की परिभाषा थोड़ी तकनीकी है, पर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा समूह है, मल्टीपल, जिसके सदस्य तो स्थिति से ही आते हैं, पर वो समूह खुद स्थिति के नियमों में फिट नहीं होता। वो समूह स्थिति का हिस्सा नहीं माना जाता, वो एक तरह से अवैध है, इल्लीगल।
अवैध समूह?
हाँ, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, उसमें जो लोग थे वो तो फ्रांसीसी ही थे, स्थिति का हिस्सा थे, पर क्रांति अपने आप में एक नई चीज थी, एक ऐसा समूह जिसने राजशाही के नियमों को तोड़ दिया। वो उस समय के लिए अवैध थी। और घटना बिजली की कौंध की तरह होती है, आती है और चली जाती है, क्षणभंगुर।
अगर वो आके चली जाती है तो फिर वो स्थायी बदलाव कैसे लाती है?
हाँ, यहीं पर जरूरत पड़ती है हस्तक्षेप की, किसी को या किसी समूह को। ये फैसला लेना पड़ता है, ये दांव लगाना पड़ता है, ये घोषणा करनी पड़ती है कि हाँ, वो जो हुआ था वो एक घटना थी और वो सच थी। ये बिना किसी गारंटी के लिया गया फैसला होता है, एक तरह का जुआ। और इसी फैसले से, इसी हस्तक्षेप से जन्म होता है विषय का, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी।
हाँ, वो विषय जो घटना के बाद आता है।
बिल्कुल, विषय वो है जो उस घटना के प्रति निष्ठा रखता है। और निष्ठा का मतलब सिर्फ मान लेना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला काम है, एक प्रक्रिया है।
कैसा काम?
विषय ये सवाल पूछता है, अगर वो घटना सच थी, अगर क्रांति हुई थी, या अगर वो वैज्ञानिक खोज सही थी, या अगर ये प्यार सच्चा है, तो अब दुनिया को कैसे देखा जाए, अब क्या चीजें मायने रखती हैं। फिर वो स्थिति के अंदर उन चीजों को, उन लोगों को, उन विचारों को खोजता है जो उस घटना से जुड़े हैं, और उन्हें एक नए अर्थ में, एक नई कहानी में पिरोता है। ये बहुत मुश्किल, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है।
और इसी निष्ठा की प्रक्रिया से सत्य, ट्रूथ पैदा होता है।
हाँ, यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुजू के लिए सत्य कोई पहले से मौजूद चीज नहीं है जिसे हम खोज लेते हैं, सत्य बनाया जाता है,
प्रोड्यूस होता है,
बनाया जाता है। हाँ, उसी निष्ठा और संघर्ष की प्रक्रिया से। और ये जो सत्य बनता है उसे वो जेनेरिक सेट कहते हैं। जेनेरिक का मतलब है कि वो स्थिति के पुराने बंटवारों को नहीं मानता, जैसे अमीर गरीब या ऊंच नीच या इस पार्टी का उस पार्टी का, वो इन सब को काटता हुआ सबके लिए एक नया सार्वभौमिक सत्य रचने की कोशिश करता है। और ये सत्य हमेशा अधूरा रहता है, हमेशा बनने की प्रक्रिया में।
ये तो बहुत सक्रिय किस्म का सत्य है, कोई स्थिर चीज नहीं।
बिल्कुल, किताब के आखिरी हिस्सों में बादियो पॉल कोहेन नाम के गणितज्ञ की एक तकनीक फोर्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी जटिल है, पर इसका मूल आइडिया ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे निष्ठा के जरिए ये नया अवैध सत्य धीरे धीरे स्थिति का हिस्सा बन सकता है, उसमें फोर्स किया जा सकता है बिना कोई बड़ा तार्किक विरोध पैदा किए।
अच्छा,
ये दिखाता है कि कैसे एक क्रांतिकारी विचार या घटना अंततः एक नई वास्तविकता, एक नई दुनिया बना सकती है। ये तकनीकी है, पर संदेश साफ है। प्रतिबद्धता और निष्ठा से नई दुनिया बनाना गणितीय रूप से भी संभव है।
वाह, ये तो वाकई एक पूरी नई दुनिया रचने का दर्शन है, काफी गहरा और जटिल भी। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें, कुछ की थीम्स निकालने हो तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे, शायद सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है, गणित ही होने का विज्ञान है। अस्तित्व को, बीइंग को अगर ठीक से समझना है तो उसका सबसे सटीक तरीका गणित है, कविता या धर्म या भौतिकी नहीं। ये दर्शन के लिए एक बहुत बड़ा और रैडिकल दावा है।
ठीक है, और दूसरी?
दूसरी बात, दुनिया में स्थिरता, जिसे वो स्ट्रक्चर या स्थिति कहते हैं, और बदलाव यानी घटना, दोनों एक साथ मौजूद है। एक तरफ नियम है, व्यवस्था है, जो चीजों को बनाए रखना चाहती है, दूसरी तरफ हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि कहीं से कुछ अप्रत्याशित, कुछ नया फूट पड़ेगा। दर्शन को इन दोनों को एक साथ सोचना चाहिए।
से एक तरह का तनाव है हमेशा।
हाँ, और तीसरी अहम बात, असली नवीनता, सच्चा बदलाव हमेशा एक घटना से आता है। बड़ा बदलाव धीरे धीरे व्यवस्था के अंदर से नहीं आता, वो हमेशा अचानक नियमों को तोड़कर आता है, चाहे वो विज्ञान में हो, राजनीति में, कला में या प्यार में।
इसके बारे में सोचे तो हाँ, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे आपने कहा भारत की आजादी का आंदोलन, उसमें भी कई ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने दिशा बदल दी। गांधी का नमक सत्याग्रह शायद एक उदाहरण हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया, लोगों को एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया। चौथी बात, विषय या व्यक्ति की पहचान उसके अंदर की चेतना या एहसास में नहीं है, बल्कि किसी बाहरी घटना के प्रति उसकी निष्ठा और उसके कर्म में है। हम वो बनते हैं जिसके प्रति हम प्रतिबद्ध होते हैं। ये हमें कर्ता बनाता है, सिर्फ दर्शक नहीं।
ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है कि हमारी पहचान हमारे कामों से तय होती है।
हाँ, और पांचवी बात, सत्य कोई पहले से तैयार चीज नहीं है जिसे हम ढूंढ लेते हैं, बल्कि वो एक लंबी कठिन प्रक्रिया से बनाया जाता है। ये उन निष्ठावान लोगों के संघर्ष का नतीजा है जो किसी घटना के बाद काम करते रहते हैं। ये कभी खत्म ना होने वाला काम है, पर यही बदलाव लाता है। ये निराशा के समय में भी उम्मीद जगाता है कि कुछ करना संभव है।
और आपने बताया था कि बादियू कहते हैं कि ये सत्य प्रक्रियाएं मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में होती हैं।
हाँ, वो चार क्षेत्रों की बात करते हैं, विज्ञान जैसे गैलीलियो की क्रांति, राजनीति जैसे कोई सफल क्रांति, कला जैसे कोई नया आर्ट मूवमेंट, और प्रेम, वो आकस्मिक मुलाकात जो दो लोगों की जिंदगी बदल दे और एक दो का सत्य रचे। हर क्षेत्र में अपनी तरह की घटनाएं होती हैं और उनके प्रति निष्ठा से नए सत्य जन्म लेते हैं।
अच्छा, इस किताब में यकीनन कई ऐसी पंक्तियां होंगी जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ खास विचार या कोट्स जो आपको याद आते हों?
हाँ, कई हैं। जैसे वो विचार कि शून्य ही सत्व का असली नाम है, द वॉइड इज द प्रॉपर नेम ऑफ बींग। इसका मतलब है कि हर बनी बनाई व्यवस्था, हर स्थिति के नीचे हमेशा कुछ अनकहा अनगिना मौजूद है, एक खालीपन, एक संभावना, और वहीं से नई चीजें आती हैं। ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है, पर ये उम्मीद भी जगाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए तय नहीं है।
शून्य आधार के रूप में। और
एक ये विचार विषय के बारे में, एक विषय सत्य की अनंत प्रक्रिया में एक सीमित बिंदु है। अ सब्जेक्ट इज अ फाइनाइट पॉइंट इन एन इन्फिनिट प्रोसेस ऑफ ट्रूथ। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक व्यक्ति के तौर पर कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न लगे खुद को, हम असल में किसी बड़ी, हमसे परे चीज का हिस्सा है, सत्य की एक प्रक्रिया के वाहक हैं।
तो ये हमारी व्यक्तिगत पहचान को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ता है।
हाँ, हमारी पहचान हमारे अंदरूनी एहसास से ज्यादा हमारी बाहरी प्रतिबद्धता हमारे कर्म से बनती है। ये विनम्र भी बनाता है और शायद प्रेरित भी करता है कि हम किस सत्य के वाहक बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में।
ये तो सब सुनने में बहुत दिलचस्प और गहरा है, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है, या ये सिर्फ दर्शन की ऊंची बातें हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल लेना देना है। आप प्यार को ही लीजिए, बादियो प्रेम को भी एक सत्य प्रक्रिया मानते हैं। किसी से वो पहली मुलाकात जिसने आपकी दुनिया बदल दी, वो एक घटना हो सकती है ना?
हाँ, हो सकता है।
फिर जब आप कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता करती हूँ, वो शायद हस्तक्षेप है, एक संकल्प लेना, एक घोषणा करना, और फिर सालों तक साथ निभाना, मुश्किलों का सामना करना, झगड़े सुलझाना, एक साझा दुनिया बनाना, ये सब निष्ठा की लंबी प्रक्रिया है। ये प्यार को सिर्फ एक रोमांटिक एहसास नहीं, बल्कि एक एक्टिव साझा प्रोजेक्ट की तरह देखने में मदद करता है, एक सत्य जिसे आप मिलकर बना रहे हैं।
ये नजरिया तो काफी अलग है। अच्छा, और राजनीति या समाज सेवा में?
सामाजिक या राजनीतिक सक्रियता में तो ये बहुत सीधे लागू होता है। कोई अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, वो स्थिति है, कोई अचानक हुआ विरोध प्रदर्शन या कोई आंदोलन शुरू होता है, वो एक घटना हो सकती है। अब वो लोग जो शुरुआती जोश ठंडा पड़ने के बाद भी उस आंदोलन के आदर्शों के लिए काम करते रहते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, वो उस घटना के विषय हैं, वो उस घटना के सत्य को समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझाता है कि भारत में या कहीं भी सामाजिक बदलाव लाना इतना लंबा और मुश्किल काम क्यों होता है, क्योंकि उसके लिए निरंतर निष्ठा बनाए रखनी पड़ती है।
सही कहा, जोश तो आता जाता रहता है, निष्ठा बनाए रखना मुश्किल है। और कामकाज की दुनिया में, ऑफिस में,
दफ्तर या कारोबार में इनोवेशन के बारे में सोचिए, कंपनी के काम करने का जो स्थापित तरीका है, जो नियम है, वो स्थिति है।
ठीक है।
कोई नया बिल्कुल हटके आइडिया आता है, वो घटना है। अब वो टीम या वो व्यक्ति जो उस नए आइडिया पर विश्वास करता है, जब सब लोग शक कर रहे हों तब भी, और उसे सफल बनाने के लिए जी जान लगा देता है, वो उस नए व्यावसायिक सत्य का विषय बन जाता है। ये स्टार्टअप्स पे भी लागू होता है जो पूरी इंडस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं, या कोई कलाकार जो बिल्कुल नई शैली बनाता है।
और शायद ये व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें कुछ सिखाता है जिंदगी जीने के बारे में।
हाँ बिल्कुल, शायद ये हमें उद्देश्य और हिम्मत देता है। ये बताता है कि हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हम किसी कला के प्रति, किसी विज्ञान के प्रति, किसी सामाजिक मुद्दे के प्रति या किसी रिश्ते के प्रति निष्ठावान होकर विषय बन सकते हैं, हम खुद को बना सकते हैं। ये हमें बताता है कि जिंदगी में अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो सब बदल दे, और उन मोड़ों पर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किसके प्रति हम निष्ठा दिखाते हैं, यही चीज हमें परिभाषित करती है। यह हमें निराशावाद से लड़ने में मदद कर सकता है।
तो इस पूरी गहरी और लंबी चर्चा से अगर हम अपने साथ कुछ खास बातें लेके जाना चाहें तो वो क्या होंगी? आपके लिए सबसे अहम सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे अहम सीख यह है कि दुनिया या वास्तविकता, जिसे हम कहते हैं, वो कोई बनी बनाई स्थिर चीज नहीं है। वो हमेशा एक गतिशील खेल है, स्थिरता और बदलाव की संभावना के बीच। इसमें हमेशा अप्रत्याशित रूप से कुछ नया बनाने की, रचने की गुंजाइश बनी रहती है। ये उम्मीद देता है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली रही, वो विषय की परिभाषा थी कि हमारी पहचान हमारे अंदर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में किसी घटना या विचार के प्रति हमारी सक्रिय प्रतिबद्धता से बनती है। ये कर्म को, एक्शन को बहुत ज्यादा महत्व देता है। ये निष्क्रियता के खिलाफ एक तर्क है।
हाँ, और इससे जुड़ा हुआ वो विचार कि सत्य पाया नहीं जाता, बनाया जाता है, एक लंबी कठिन निष्ठा भरी प्रक्रिया से, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना लगें, कोशिश करने से, प्रतिबद्ध रहने से कुछ नया, कुछ बेहतर बनाना हमेशा संभव है। ये जिम्मेदारी भी देता है और साथ ही उम्मीद भी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।